उसके बाद जो है ना वो अदर क्यूटेनियस फीचर्स में हमारे पास जो है वो है कि फाइब्रोमेटिस ग्रोथ और दूसरी जगह पे भी आ सकते हैं, जैसे कि नेक और एक्सेला पे, फोरहेड पे भी एक फाइब्रोमेटस प्लाक आ सकता है, जो फोरहेड पे और स्कैल्प पे, और पोलियोसिस। ठीक है, तो ये जो है ना आगे जब हम इसका क्राइटेरिया पढ़ेंगे ना, तो उसके माइनर क्राइटेरिया के अंदर आएगा। एनजियो जो फाइब्रोमास है वो मेजर क्राइटेरिया में है, और ये जो फाइब्रोमेटस प्लाक है दी फोर हेड, ये माइनर क्राइटेरिया में है। ठीक है, फिर उसके बाद ना हम आ जाते हैं ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में भी जैसे न्यूरोफाइब्रोमटोसिस में हमने पढ़ा था कि पेडेंक्यूलेटेड ग्रोथ न्यूरोफाइब्रोमास हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं फाइब्रोमेटस ट्यूमर्स। ठीक है, गम्स पे, ओकेजनली पैलेट पे, और रेयरली बकल म्यूकोजा पे, टंग पे, लैरिंग्स या फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा टीथ में जो है ना वो स्मॉल पिट्स आते हैं डेंटल एनामल में एडल्ट्स के अंदर, एंड लेस कॉमनली इन द डेसिडुअस टीथ इन द चिल्ड्रन। तो ओरल कैविटी में हमारे पास दो फाइंडिंग्स आ गए हैं जो दोनों उसकी माइनर क्राइटेरिया के अंदर आएंगे, एक तो फाइब्रोमास ऑफ द गम्स और दूसरा पिट्स इन द डेंटल एनामल। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है सीएनएस मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अब जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशंस आती हैं ट्यूबरस क्लोरोसिस में, वो दो टॉप पे जो हमने बतानी है ना वो स्किन मैनिफेस्टेशंस है और सीएनएस मैनिफेस्टेशन है, जो बिल्कुल शुरू शुरू ऑफ द डिजीज़ में आती हैं, और फिर बाकी ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट उसके बाद आती है। तो 60-70% इंडिविजुअल्स के अंदर जो है ना वो सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये प्रोग्रेसिव है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और जो लर्निंग डिफ़िकल्टी वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। इफ़ देयर इज़ नो लर्निंग डिफ़िकल्टी इन द चाइल्डहुड, तो फिर बहुत ही कम चांस है कि फिर एडल्ट लाइफ में आगे जाके लर्निंग डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो दूसरा इसका मैनिफेस्टेशन है वो एपिलेप्सी और सीजर्स है। तो वो ट्यूबरस क्लोरोसिस वाला जो बच्चा होगा वो बचपन से एशलीफ मैक्यूल और कन्वर्जन सीजर्स के साथ हमारे पास आएगा, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा उसके अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज आएंगी। फिर उसके बाद ये है कि ये यूजुअली एपिलेप्सी बिगिंस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ इन्फेंसी में, और लेस फ्रिक्वेंटली है कि वो प्यूबर्टी तक उसको सीजर्स ना हो और फिर बाद में होने लगे। ठीक है, और कभी कभी साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ये सीएनएस के अंदर होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर जो है ना वो फाइब्रोमास बनते हैं। ठीक है, ट्यूबरस क्लेरोटिक नोड्यूल्स कह सकते हैं, या फिर ट्यूबरस क्लेरोटिक इसमें हाँ ग्लायल प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है, तो जब वो ग्लायल प्रोलिफरेशन होती है तो वो ट्यूबरस क्लेरोटिक नोड्यूल्स बनाते हैं। कहाँ कहाँ पे बनाते हैं? सेरिब्रम में, वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर, बेसल गैंग्लिया में, और लेस कॉमनली सेरिबेलम, मेडुला और कॉर्ड में। तो इसी वजह से हमें इनके फीचर्स नहीं मिलेंगे, मेडुला और सेरिबेलम वगैरह की जैसे बैलेंस में प्रॉब्लम, इसमें हमें बेसिकली क्योंकि सेरिब्रम में मिलेगा तो उसमें सीजर्स होंगे क्योंकि पैरेनकाइमेटस लीजन है ना। फिर उसके बाद लर्निंग डिफ़िकल्टीज होंगी, स्पीच एबनॉर्मलिटी हो सकती है, मोटर एबनॉर्मलिटी हो सकती है, और जब ये वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर होगा तो वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर ग्रो करेगा, और जो फॉरमेंस है उनको ब्लॉक करके वेंट्रिकुलर मैगैली करेगा, हाइड्रोकेफेलस करेगा और रेस्ट इंट्राक्रैनियल प्रेशर करेगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके इंट्राक्रैनियल चेंजेस। उसके अलावा इसमें इंट्राक्रैनियल मैलिग्नेंसीज भी हो सकती हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास श्वानोमा, एस्ट्रोसाइटोमा वगैरह है, सब एपेंडाइमल ट्यूमर्स हैं। ठीक है, फिर ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट हमारे पास आ जाती है। तो ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट में जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, ये लिश नोड्यूल्स और ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में लिश नोड्यूल्स, और दूसरा क्या था, ऑप्टिक ग्लायोमा। इसी तरह इसके जो ओक्यूलर मैनिफेस्टेशंस है ना उसमें हमारे पास आता है कि रेटिना के ऊपर या तो वाइट स्ट्रीक्स ग्रो करें होंगे अलॉन्ग द ब्लड वेसल्स, और दे विल अपियर एज अ राउंडेड ट्यूमर्स ऑन द ऑप्टिक डिस्क, यानी रेटिना के ऊपर फाइंडिंग्स हमें नजर आएंगी। ठीक है, और उसके अलावा रेटिना के ऊपर कभी कभी रेयरली दे में भी रेटिना पिगमेंट्री रेटिनल एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, जो वाइट स्ट्रीक्स थे या वाइट रैंडेड ट्यूमर्स थे उसको हम कह रहे हैं फैकोमास, रेटिनल फैकोमास, और रेटिनल पिगमेंट्री एबनॉर्मलिटीज़ आर रेयर। उसके अलावा आयरिस के ऊपर भी हमें हाइपो पिगमेंटेड स्पॉट्स नज़र आ सकते हैं, जस्ट लाइक द एशलीफ मैक्यूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना कार्डिक इन्वॉल्वमेंट में हमारे पास ओवर 50% ऑफ द पेशेंट्स में कार्डिक इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चों में होती है, ए सिम्टोमेटिक होती है एंड इट डज़ नॉट लीड टू डेथ, जिसमें हमारे पास कार्डियक रैबडोमायोमा है। लेकिन रेयरली कभी इस तरह होता है कि अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो और वो ब्लॉक कर रहा हो उसको ओपनिंग्स को, तो फिर उसमें डेथ हो सकती है। एंड मोस्टली ये रिग्रेस कर जाता है और इसमें हम प्री नेटल डायग्नोसिस एकोकार्डियोग्राफी से भी कर सकते हैं। रीनल इन्वॉल्वमेंट में जो है ना इसकी एंजियो एलियोमायोमा है, सॉरी एंजियो मायोलाइपोमा, तो मिलते जुलते नाम है तो मिक्स होता है। अच्छा एंजियो मायोलाइपोमा, ठीक है, तो ये क्या करता है, रीनल पैरेन्काइमा से ग्रो करता है, यूजुअली स्लो ग्रोइंग है और इसके प्रेशर इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करता है, क्योंकि वेसल से ओरिजिनेट कर रहा होता है तो हेमिचूरिया भी कर सकता है, और लेस कॉमनली इसके अंदर ना रीनल सिस्ट भी हो सकते हैं। तो रीनल में हमने जो सा इसका फाइब्रोमा याद रखना है, दैट इज़ दी एनजियो मायोलाइपोमा और रीनल सिस्ट। लंग में जो है ना वो उसके दो फीचर्स हैं, एक इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है और दूसरा जो है ना वो हमारे पास है, एक मिनट किधर गया ये, इसमें भी वही होता है फाइब्रो लियोमायोमा। हाँ इसके अंदर फाइब्रो लियोमायोमा होता है। उसके अलावा इस इट कैन बी एसोसिएटेड विद डिस्निया, क्योंकि फाइब्रोसिस हो रही है इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस, और इट कैन लीड टू न्यूमोथोरिक्स, टेंशन न्यूमोथोरिक्स, कॉर पल्मोनेल और लिम्फेंजियोमायोमा। जीआई इन्वॉल्वमेंट के अंदर इसके हेमाटोमेटस पॉलिप्स मिलेंगे। एंडोक्राइन इन्वॉल्वमेंट जब होगी तो इसके अंदर ना एड्रीनल ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट, थायराइड का डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर प्यूबर्टी होगी, जस्ट लाइक न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस के अंदर थे उसी तरह के होंगे। बोन इन्वॉल्वमेंट में से डिफरेंट बोनी सिस्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है, फेलेंजीज के ऊपर, टर्मिनल फेलेंजीज में इन द हैंड्स एंड द फीट, और इसके अलावा वर्टिब्री में, पेल्विस में और लॉन्ग बोन्स में बोनी सिस्ट मिल सकते हैं। अच्छा तो यही इसके फीचर्स को हमने याद रखना है इन द मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में हमारे पास स्किन के सीएनएस के मैनिफेस्टेशंस हमने याद रखनी है, जिसमें फेशियल एंजियोफाइब्रोमास हैं या फोरहेड प्लाग है, नॉन ड्रामेटिक अंगुल और पेरियंगुल फाइब्रोमा, हाइपोमेलानोटिक मैक्यूल्स जिसको हम एश लीफ मैक्यूल्स कह रहे हैं, मोर देन 3 शैग्रीन पैचेस। तो चारों क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन मेजर फाइंडिंग्स में आएंगे, एंजियोफाइब्रोमा या फोरहेड प्लाग, अंगुल पेरियंगुल फाइब्रोमा, हाइपोमेलानोटिक मैक्यूल मोर देन 3 और शैग्रीन पैचेस। उसके अलावा जो ब्रेन का है वो क्या होगा, कॉर्टिकल ट्यूबर, वही जो ट्यूबोस्क्लेरोटिक नोड्यूल्स हैं उसको कॉर्टिकल ट्यूबर कहते हैं, जब वो सर्बोकॉर्टिक्स के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा सब एपेंडाइमल नोड्यूल या फिर सब एपेंडाइमल जॉइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा, ये सीएनएस के फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। सीएनएस में 3 फाइंडिंग्स है, कॉर्टिकल ट्यूबर, सब एपेंडाइमल नोड्यूल या फिर सब एपेंडाइमल जॉइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा, फिर रेटिना में मल्टीपल रेटिनल नोड्यूलर हेमाटोमास, ठीक है, फिर कार्डियक रैबडोमायोमा, लिम्फेंजियो मायोमेटोसिस और रीनल एंजियोमायोलाइपोमा। स्किन की मैनिफेस्टेशन, ब्रेन की मैनिफेस्टेशन, रेटिना की, हार्ट की, लंग की और लिम्फेंजियो मायोमेटोसिस, ये जो है ना हमें मिलेगा ऑन द मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में मैंने बताया था कि जिंजाइवल फाइब्रोमास और डेंटल जो डेंटल एनेमल में पिट्स, हेमाटोमेटस, रीनल पॉलिप्स, सेरेब्रल वाइट मैटर स्ट्रीक्स जो माइग्रेशन लाइंस, बोन सिस्ट, नॉन रीनल हेमाटोमा और रेटिनल एक्रोमिक पैचेस, कन्फेटी स्किन लेशन और मल्टीपल रीनल सिस्ट, ठीक है। तो जो रीनल के जो मेन वो है ना रीनल एंजियोमायोलाइपोमा, वो मेजर क्राइटेरिया में आएगा। उसके अलावा जो रीनल सिस्ट है और नॉन रीनल हेमाटोमास हैं वो आएंगे माइनर क्राइटेरिया में, डेंटल पिट्स आएगा, जिंजाइवल फाइब्रोमास होंगे, आईज के अंदर जो है ना वो हमारे पास रेटिनल एक्रोमिक पैच है, ब्रेन में सेरेब्रल वाइट मैटर माइग्रेशन लाइंस, बोन सिस्ट, कन्फेटी लेशंस इन द स्किन, ये सारे आएंगे इन द माइनर क्राइटेरिया। डायग्नोसिस के लिए हमें क्या चाहिए, अगर डेफिनेट डायग्नोसिस है टू मेजर क्राइटेरिया या फिर वन मेजर एंड टू माइनर क्राइटेरिया। मोस्ट प्रोबेबल या प्रोबेबल डायग्नोसिस के लिए वन मेजर एंड वन माइनर क्राइटेरिया। पॉसिबल डायग्नोसिस के लिए या तो वन मेजर क्राइटेरिया या फिर टू और मोर माइनर फीचर्स हमारे पास होने चाहिए। तो फिर हम इस बेसिस पे कहेंगे कि ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है। ओके फिर उसके बाद आ जाते हैं कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस पे बेनाइन कोर्स था, इसमें जो है ना पुअर प्रोग्नोसिस है। यूजुअली द डेथ अकर्स विद जो मोर्टेलिटी रेट है वो एज के साथ इंक्रीज होता है। फर्स्ट ईयर में 3% है, 10 ईयर्स के अंडर अंडर 28% और 75% बाई द एज ऑफ 25 ईयर्स। और डेथ की जो मेजर कॉजेज हैं वो क्या है, एपिलेप्सी है, इंटरकरेंट जो इन्फेक्शन है, और ओकेजनली इट बिकॉज ऑफ अ ट्यूमर, कार्डिक फेलियर और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट। इन्वेस्टिगेशंस में हमने फुल एग्जामिनेशन करना है, पेशेंट का भी, उसके जो रिलेटिव्स होंगे उनका भी करना है वुड स्लाइम एग्जामिनेशन से, बाकी मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब कि आई एग्जामिनेशन करनी है, MRI ऑफ द ब्रेन करना है और एको करना है, EEG करेंगे, एक्सरे करेंगे, उसमें हमें डिफरेंट फीचर्स नज़र आएंगे, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड, CT ऑफ द किडनीज और कोलोनोस्कोपी और फैमिली स्क्रीनिंग। डिफरेंशियल्स में जो एंजियोफाइब्रोमास ऑफ द फेस है ना वो बिल्कुल एक्नी वल्गैरिस की तरह नज़र आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, इसके अंदर कोई पस्ट्यूल्स नहीं होंगे और टेलेंजेक्टेजियाज होंगे। और फर्म जो जो स्किन पैप्यूल्स है ना उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम एपिथिलियोमा रेटिनोइडी सिस्टिकम। मैनेजमेंट के लिए जो है ना वो हमारे पास है जेनेटिक काउंसलिंग, और जो वो वाले वैस्कुलर लीशन उनके लिए पल्स डायलीजर जिनका नैनोमीटर है 5 वेवलेंथ है 595 नैनोमीटर। उसके अलावा CO2 लेज़र हम कर सकते हैं फॉर लार्जर लीशंस और डीब्राइड वगैरह करने के लिए। टॉपिकल हम रेपामाइसिन लगा सकते हैं, और सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट के लिए सिस्टमिक रेपामाइसिन दे सकते हैं फॉर विजरल ट्यूमर्स और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन एंड रेफरल टू द न्यूरोसर्जरी इफ देयर इज एपिलेप्सी एंड इट इज अनकंट्रोल्ड विद द ड्रग्स।